का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी सीमांत। उस दिन सवेरे कुछ ठंड थी, परंतु दोपहर के समय हवा गर्म होकर दक्षिण दिशा की ओर से बहने लगी थी। यतीन जिस बरामदे में बैठा हुआ था, वहां से उद्यान के एक कोने में खड़े हुए कटहल और दूसरी ओर के शीर्ष वृक्ष के बीच से बाहर का मैदान दिखाई पड़ता था। वह सुनसान मैदान फाल्गुन की धूप में धू धू करके जल रहा था। उसी से सटा हुआ एक कच्चा रास्ता निकल गया है। उसी पर एक खाली बैलगाड़ी धीमी चाल से गांव की ओर लौट रही थी और गाड़ीवान धूप से बचने के लिए सिर पर लाल रंग का गमछा लपेटे मस्ती में किसी गीत की कड़ियां दोहराता जा रहा था। ठीक इसी समय पीछे से किसी नारी का मधुर और हास्य स्वर फूट पड़ा। क्यों यतीन, क्या बैठे बैठे अपने पिछले जन्म की किसी बात को सोच रहे हो? यतीन ने सुना और पीछे की ओर देखकर कहा, क्या मैं ऐसा ही अभागा हूं पटल, जो सोचते समय पिछले जन्म को विचारे बिना काम ही नहीं चलेगा? अपने परिवार में पटल नाम से पुकारी जाने वाली वह बाला बोल उठी, झूठी शेखी मत मारो यतीन, तुम्हारे इस जन्म की सारी बातें मुझे मालूम है। छी छी, इतनी उम्र हो गई फिर भी एक बहू घर में ना ला सके। हमारा जो धन्यसर माली है उसकी भी एक घरवाली है, रात दिन उसके साथ लड़ झगड़ कर मोहल्ले भर के लोगों को वह कम से कम इतना तो बता देती है कि उसका भी इस दुनिया में अस्तित्व है। तुम तो मैदान की तरफ मुंह करके ऐसे भाव दर्शा रहे हो मानो किसी पूनम के चांद से सलोने मुखड़े का ध्यान करने के लिए बैठे हो। तुम्हारी इन चलाकियों को मैं खूब समझती हूं, यह सब लोगों को दिखाने के लिए ढोंग रच रखा है। देखो यतीन, जाने माने ब्राह्मण के लिए जनेऊ की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा वह धन्यसर माली तो कभी विरह का बहाना करके इस सुनसान मैदान की ओर दृष्टि गढ़ाए बैठा नहीं रहता। जुदाई की लंबी घड़ियों में भी उसे वृक्ष के नीचे हाथों में खुरपी थामे समय काटते देखा है, किंतु उसकी आंखों में ऐसी खुमारी नहीं देखी। एक तुम हो जिसने सात जन्म से कभी बहू का सलोना मुखड़ा नहीं निहारा। बस अस्पताल में शव की चीरफाड़ करके और मोटे मोटे पोथे रट रट कर उम्र के सुहावने दिन काट दिए। अब आखिर इस चिलचिलाती दोपहरी में तुम इस प्रकार ऊपर की ओर टकटकी बांधे क्या देखते रहते हो? कुछ तो कहो।
नहीं, ये सब व्यर्थ की चालाकियां मुझे अच्छी नहीं लगती।
देख देख कर सारा बदन मन की ज्वाला से जलने लगता है। यतीन ने सुना और हाथ जोड़कर कहा,
चलो रहने भी दो,
मुझे व्यर्थ में वैसे ही लज्जित मत करो। तुम्हारा वह धन्य सर माली ही सब प्रकार से धन्य रहे, उसी के आदर्शों पर मैं चलने का यत्न करूंगा। बस अब देर नहीं। सवेरे उठते ही सामने लकड़ियां बीनने वाली जिस किसी बाला का मुंह देखूंगा, उसी के गले में प्रेम से गूंथी हुई फूलों की माला डाल दूंगा। तुम्हारे ये कटाक्ष भरे शब्द अब मुझसे सहन नहीं होते।
बात निश्चित रही ना?
पटेल ने पूछा।
हाँ, तब चलो मेरे साथ।
यतीन कुछ भी ना समझ सका। उसने पूछा,
कहाँ?
पटेल ने उसे उठाते हुए कहा,
चलो तो सही।
परंतु यतीन ने हाथ छुड़ाते हुए कहा,
नहीं नहीं, अवश्य तुम्हें कोई नई शरारत सूझी है। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जाने का हूं।
अच्छा, तो यहीं पड़े रहो,
पटेल ने रोष भरे शब्दों में कहा और शीघ्रता के साथ अंदर चली गई। यतीन और पटेल की आयु में बहुत थोड़ा अंतर है, और वो है सिर्फ एक दिन का। पटेल यतीन से बड़ी थी, चाहे उसे ये बड़प्पन एक ही दिन का मिला हो, लेकिन इस एक दिन के लिए यतीन को उसके लिए लोकाचार हेतु सम्मान दिखाना होगा। ये यतीन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। दोनों का संबंध चचेरे भाई बहन का है और बचपन एक साथ ही खेलकूद में बीता है। यतीन के मुख से दीदी शब्द न सुनकर पटेल ने अनेकों बार पिता और चाचा से उसकी शिकायत की, परंतु किसी प्रकार से भी इसका खास फल निकला हो ऐसा जान नहीं पड़ता। संसार में इस एक छोटे भाई के पास भी पटेल का छोटा सा मामूली नाम पटेल आज तक नहीं छिप सका। पटेल देखने में खासी मोटी ताजी गोल मटोल लड़की है। उसके प्रसन्न मुख से किए जाने वाले आश्चर्यजनक हास परिहास को रोकने की ताकत समाज में भी नहीं है। उसका चेहरा सास मां के सामने भी गंभीरता स्थापित नहीं कर सका। पहले पहल वह इन बातों के कारण इस नए घर में चर्चा का केंद्र बनी रही, अंत में स्वयं पराजित होकर परिजनों को कहना पड़ा, इस बहू के तो ढंग ही अनोखे हैं। कुछ दिनों के बाद तो इसके ससुराल में यहां तक नौबत आ गई
कि इसके हास्य के आघात से परिजनों का गांभीर्य भूमि साथ हो गया, क्योंकि पटल के लिए किसी का भारी जी और मुंह लटकाना देखना असंभव है। पटल के पति हर कुमार बाबू डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। बिहार के एक इलाके से उनकी तरक्की करके उन्हें कलकत्ते के आबकारी विभाग में उच्च पद पर लाया गया है। प्लेग के भय से कलकत्ता के बाहर उपनगर में एक किराए के मकान में रहते हैं और वहीं से अपने काम पर कलकत्ते आया जाया करते हैं। मकान के चारों ओर बड़ी चार दीवारी है और उसी में एक छोटा सा बगीचा है। इस आबकारी के विभाग में हर कुमार बाबू को अक्सर दौरे के रूप में अनेक गांव का चक्कर काटना पड़ता है। पटल इस मौके पर अकेली रह जाती है, सो उसे खलता है। वह इस बात को दूर करने के लिए किसी आत्मीय जन को घर से बुलाने की सोच रहे थे कि उसी समय हाल ही में डॉक्टर की उपाधि से सुशोभित यतीन चचेरी बहन के निमंत्रण पर एक सप्ताह के लिए वहां आ पहुंचा। कलकत्ते की प्रसिद्ध अंधेरी गलियों में से होकर पहली बार पेड़ पत्तों के बीच आकर आज यतीन इस सूने बरामदे में फाल्गुन की दोपहर से आत्मविभोर बैठा था कि तभी पटल पीछे से आकर यह नई शरारत कर गई। पटल के चले जाने के बाद वह कुछ देर के लिए निश्चिंत होकर बैठ गया। लकड़ी बीनने वाली लड़कियों का जिक्र आ जाने के कारण यतीन का मन बचपन में सुनी परिदेश की रोचक कथाओं के गली कूचों में चक्कर काटने लगा। पर कहां, अभी कुछ क्षण भी नहीं बीते होंगे कि पटल का हास्य से भरा हुआ चिर परिचित स्वर फिर यतीन के कानों में पड़ा। उसे सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने मुड़कर देखा, पटल किसी बालिका को खींचे ला रही थी। इतना देखकर यतीन ने मुख फेर लिया। तभी पटल ने उस बालिका को यतीन के सामने करके पुकारा, चुनिया। बालिका ने अपना नाम सुन करके कहा, क्या है दीदी? पटल ने चुनिया का हाथ छोड़ते हुए कहा, मेरा ये भाई कैसा है, देख तो भला। चुनिया, जो अब तक गर्दन झुकाए हुए थी, निसंकोच यतीन के चेहरे की ओर निहारने लगी। उसे ऐसा करते हुए देख पटल ने पूछा, क्यों री, देखने में तो अच्छा लगता है ना? चुनिया ने शांत स्वर से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अच्छा ही है। यतीन ने देखा और सुना, फिर लज्जावश कुर्सी से उठता हुआ बोला, ओह पटल, ये क्या लड़कपन है?
मैं लड़कपन कर रही हूं या तुम व्यर्थ में ही बुढ़ापा दिखला रहे हो? पटल ने यतीन के शब्दों को सुनकर निसंकोच कहा,
अब बचना मुश्किल है।
यतीन के होठों से यह शब्द निकले और वह वहां से भाग गया। पटल ने उसका पीछा किया और भागती हुई बोली,
अरे सुनो तो, भय की कोई बात नहीं है, यकीन तनिक भी नहीं है।
कौन तुम्हारे गले में अभी माला डाल रहा है? फाल्गुन चैत में तो इस बार कोई लगन ही नहीं पड़ती,
अभी बहुत समय है।
वे दोनों उस जगह से चले गए, परंतु चुनिया आश्चर्यचकित अवस्था में वहीं खड़ी रह गई। उसके इकहरे बदन ने तनिक भी जुम्बिश न की। उसकी आयु लगभग 16 ही वर्ष की होगी। उसके सलोने मुख का वर्णन पूर्णतया लेखनी से नहीं किया जा सकता, परंतु इतना अवश्य लिखा जा सकता है कि उसमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो देखते ही वन की मृगी की याद दिला देती है। साहित्यिक भाषा में कहने की आवश्यकता पड़े तो उसे निर्बुद्धि भी कहा जा सकता है, किंतु मूर्ख के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। हां, अपने समाधान के लिए यह अवश्य सोचा जा सकता है कि बुद्धि वृत्ति पूर्ण विकसित नहीं हुई है, लेकिन इन सब बातों से चुनिया का सौंदर्य घटा नहीं, अपितु उसमें एक विशेषता ही आ गई है। संध्या को हरकुमार बाबू ने कलकत्ते से लौटकर यतीन को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उसी मुद्रा में बोले,
तुम आ पहुंचे, चलो बड़ा ही अच्छा हुआ।
और फिर दफ्तर के कपड़े बदलकर जल्दी से उसके पास बैठकर कुछ व्यस्त भाव बोले, यतीन, तुम्हें जरा डॉक्टरी करनी होगी। अकाल के दिनों में जब हम पश्चिम की ओर रह रहे थे तभी से एक लड़की को पाल रहे हैं। पटल उसे चुनिया कहकर पुकारती है। उसके माँ बाप और वह सब बाहर मैदान के पास ही एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। सूचना मिलते ही मैंने बाहर जाकर देखा तो बेचारे माँ बाप दुनिया के झंझटों से मुक्ति पा चुके थे, सिर्फ लड़की के प्राण अभी बाकी थे। मैंने उस लड़की को वहां से उठाकर पटल को सौंप दिया। पटल ने अपना उत्तरदायित्व समझा और बड़ी सेवा यत्न के बाद उसे बचाने में समर्थ हुई। उसकी जाति के विषय में कोई कुछ नहीं जानता। यदि उस ओर से कोई एतराज भी करता है तो पटल कहती है, वह द्विज है, एक बार मरकर फिर से जो इस घर में जन्मी है, इसलिए इसकी मूल जाति तो कभी की मिट चुकी है। पहले पहल उसने पटल को मां कहकर पुकारना शुरू किया था, पर पटल को इसमें लज्जा का भास होता था, अतः पटल ने उसे धमकाते हुए कहा, खबरदार मुझे अब से मां मत कहना, दीदी कहकर भले ही पुकार सकती हो। पटेल कहती, अरे इतनी बड़ी लड़की यदि मुझे माँ कहेगी तो मैं अपने आप को बुढ़िया समझने लगूंगी। हरकुमार बाबू ने लंबी सांस खींचकर पुनः कहा, यतीन एक बात और भी है, शायद उन अकाल के दिनों में या फिर किसी अन्य कारणवश चुनिया को रह रहकर एक शूल की तरह पीड़ा उठा करती है। असल बात क्या है सो तुम्ही को अच्छी तरह डॉक्टरी परीक्षा करके समझना होगा।
अरे ओ तुलसी, चुनिया को तो बुला ला।
हरकुमार बाबू के इस लंबे व्याख्यान की समाप्ति पर यतीन खुलकर सांस भी न ले सका था कि चुनिया केश बांधती हुई अपनी आधी बंधी बेनी को पीठ पर लटकाए कमरे में दाखिल हुई। अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को एक बार दोनों व्यक्तियों पर डालकर चुपचाप खड़े हो गई। हरकुमार बाबू सबकी चुप्पी को तोड़कर बोले,
तुम तो व्यर्थ में ही संकोच कर रहे हो यतीन, यह तो देखने भर को बड़ी है, कच्चे नारियल की तरह इसके भीतर सिर्फ स्वच्छ तरल द्रव्य ही छलक रहा है। कठोर गरी की रेखा मात्र भी अभी तक फूटी नहीं है। यह बेचारी कुछ भी समझती बूझती नहीं है, इसे तुम नारी समझने की भूल मत कर बैठना। यह तो जंगल की भोली भाली मृगी है।
अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी सीमांत का पहला भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।